तीर्थंकर परमात्माओं के विरह को भुला देने में निमित्त कहा जा सकता है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भले ही वर्तमान में यहाँ इस पंचम काल में न हो, लेकिन यदि ये ग्रंथराज समय सार हमारे पास में है तो ज्ञानी जीव ये कहते हैं कि मानो तीर्थंकरों का उपदेश ही हमारे पास में उपलब्ध है। आखिर तमाम शरण में बैठकर वे तीर्थंकर परमात्मा क्या बातें बताते होंगे, आखिर दिव्य ध्वनि में हमें क्या बात जानने को मिलती होगी। साक्षात भगवान महावीर स्वामी यदि विराजमान होते तो वे हमें क्या बतलाते। बहुत से लोग ऐसा बहाना बनाते हैं कि पंचम काल चल रहा है, इस काल में तो धर्म नहीं हो सकता, पंचम काल चल रहा है इस काल में तो सम्यक दर्शन या मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग दुर्लभ है, ऐसा समझते हैं लोग। और ऐसा समझते हैं कि यदि तीर्थंकर होते तो शायद हमारा भला होता, चौथा काल होता तो भला होता। मैं कहता हूँ भैया, क्या कभी चौथे काल में जन्म नहीं हुआ? क्या कभी तीर्थंकरों के सानिध्य तुम्हें मिला नहीं? बातें तो ऐसी करते हैं कि जैसे चौथा काल में भी जन्म हो जाता तो हमारा मोक्ष हो जाता। लेकिन भाई, हम यहाँ बैठे हैं, यह इस बात को दिखाता है कि चौथे काल में अनंत बार जन्म लेकर के भी हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना। जब हम सम्यक दर्शन और आत्मा को जानने, पहचानने और अनुभव करने की बात करते हैं, तब भी ये जीव इसी प्रकार का बहाना बनाता है। जयसेनाचार्य ने इसी समय सार की टीका लिखते समय एक बात ऐसी लिखी कि चौथे काल में तीर्थंकर भगवान कोई आत्मा को तुझे हथेली से भर के नहीं दिखा देते, तो ये वहां भी आत्मा का अनुभव अपने पुरुषार्थ से ही करना पड़ता। वहां भी तीर्थंकर परमात्मा आत्मा के स्वरूप को मात्र बताते हैं और यहां भी आत्मा के स्वरूप को बता रहे हैं। क्या फर्क है? ज्ञानियों के लिए काल का कोई मैटर नहीं है, ज्ञानियों के लिए काल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समय सार ग्रंथ जबकि गाथाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि हिम्मत भाई टीका में लिखते हैं, अपनी स्तुति में लिखते हैं, बनाऊं पत्र कुंदन लो रत्नो ना अक्षरो लखी तथापि कुंभ सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी। गुंड का पत्रा बनाओ प्लेट और गुंड की प्लेट पर डायमंड से अक्षर लिखो तो कितना बहुमूल्य होंगी ये गाथाएं, कितनी कीमत का बनेगा। डायमंड के रत्नों के काम करने वाले व्यवसायियों से पूछो कि भाई हमारे को A4 साइज की गोल्ड की प्लेट और उसके ऊपर 18 फॉन्ट साइज के फॉन्ट और हमें गाथाएं लिखनी है रत्नों से डायमंड से, मतलब कितनी की बनेगी वो एक एक प्लेट और गाथाएं कितनी की, 415 गाथाएं, ये समय सार ग्रंथ कितने का पड़ेगा। वो कहते हैं भाई साहब अंक का ये मूल्य ना कभी, इसके मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता है, ये ऐसा बहुमूल्य ग्रंथ है, 2000 वर्षों से ये ग्रंथ उपलब्ध था लेकिन अलमारियों में बंद था, दर्शन पूजन करने की विषय वस्तु बना हुआ था। लोग हाथ जोड़ते थे, दर्शन करते थे और अर्घ चढ़ाते थे, लेकिन इसे जन जन के पठन पाठन की विषय वस्तु बना दिया गुरुदेव श्री कान्हजी स्वामी ने, तो उन्होंने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया। न केवल कान्हजी स्वामी अपितु 2000 वर्षों में सैकड़ों व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिनका जीवन परिवर्तित हुआ है इस समय सार को पढ़कर। गुरुदेव ने जो प्रचार प्रसार किया, श्रीमद जी ने कभी गुरुदेव को देखा नहीं, मतलब आपस में इनका आमना सामना नहीं हुआ,
उनकी बाद ही हुए,
उनके 50 वर्ष बाद हुए। श्रीमद जी के देवलोक गमन के करीब 50 वर्ष बाद कान्हजी स्वामी हुए, लेकिन वे शतावधानी थे। कृपालु देव का ज्ञान बड़ा निर्मल था, बहुत पवित्र ज्ञान था, पवित्र आत्मा थे। उन्होंने अपने ज्ञान से पहले ही यह बात कह दी थी कि भविष्य में कुछ वर्षों बाद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो व्यक्ति समय सार का बहुत प्रचार प्रसार करेगा। सुनिए आपने बात,
ये नहीं पढ़ा है,
ये नहीं पढ़ा है,
मैंने नहीं पढ़ा है।
उन्होंने समय सार ग्रंथ छपवाने की प्रेरणा दी, समय सार की महिमा, समय सार की कितनी महिमा थी उनके हृदय में, आप इस बात की का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि जब समय सार ग्रंथ उनके हाथ में आया, रत्न रत्न भर करके दे दी उन्होंने, बहुमूल्य मोतियों की थैली थी उठा करके दीदी, बिना गिने बिना देखे कि कितना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये समय सार इतना बहुमूल्य ग्रंथ है।
उनकी बहुत बड़ी भावना थी इसको गुजराती में बनवाया जाए,
इस समय सार ग्रंथ को प्रकाशित करने की उनकी भावना थी, उन्होंने समय सार ग्रंथ को प्रकाशन करने की प्रेरणा दी,
हुआ भी
और प्रकाशित हुआ भी। जब उन्होंने समय सार ग्रंथ को प्रकाशित करने की प्रेरणा दी, जो छापने वाला था, छापे वाला, वो बोलता था कि इन ग्रंथ को खरीदेगा कौन, कौन खरीदेगा इसे, तो श्रीमद जी ने कहा कि तुम तो छपाओ और जिस दिन तुम्हारे पास में 20 से ज्यादा प्रतियों का ऑर्डर आ जाए, एक साथ होता ऑर्डर, 20 प्रतियों कौन एक साथ खरीदे, तो समझ लेना कि समय सार के प्रचार प्रसार का काल आ गया है, तो तुम्हारे पास में समय सार की प्रतियां बचेंगी नहीं, इतना प्रचार प्रसार होगा। और वो जो व्यक्ति आएगा, ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम क अक्षर से शुरू होगा, लिखी हुई है बात,
क्या
ये बात लिखी है और मेरे पास में उपलब्ध है, वो लिखा हुआ मैं आपको दूंगा।
ओके,
उन्होंने ये बात वो पहले से जानते थे कि व्यक्ति हुआ, और हुआ ऐसा ही, जब समय सार ग्रंथ कान्हजी स्वामी के हाथ में आया, दिगंबर जैन नहीं थे लेकिन जैसे ही ये ग्रंथ हाथ में आया तो उन्हें लगा कि ओहो अशरीरी थवानो महाशास्त्र थे, ये वो शास्त्र है जिसने बना बनाया भगवान बता दिया। कहां से शुरू की इस ग्रंथ में चर्चा, इस ग्रंथ में बात शुरू की है सिद्धों को वंदन करते हुए, वंदित सर्व सिद्धि, सर्व सिद्धों को वंदन करते हुए बात शुरू की, नाम इसका समय सार, सिद्धों को किया वंदन और अमृत चंद्राचार्य देव ने इस सिद्ध स्वरूप की बात कर दी, उन्होंने नमस्कार सिद्धों को नहीं किया, सिद्ध स्वरूप को किया, नमः समय सार आए कह करके। दूसरी गाथा में स्वर समय और पर समय की चर्चा हुई। पहली गाथा मंगलाचरण की सिद्धि को वर्णन किया, जिन्हें आचल अनुपम गति को प्राप्त ऐसे सुंदर परमात्मा को वर्णन किया। दूसरी गाथा में कहा समय क्या है, स्वर समय और पर समय। जो अपने आत्म तत्व में ही रमण करते हैं वे स्व समय वाले हैं, जो पर पुद्गल के प्रवेश में रहते हैं वे सब पर समय है। समय माने क्या होता है, ये व्याख्याएं खुलकर के सामने आई। समय माने होता है पदार्थ, समय माने होता है द्रव्य, समय माने है वस्तु। समय समय पूर्वक आय धातु से समय शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है परिणमन करे। वो वस्तु वो समय है। तो सार क्या है, यानी जब समय शब्द का अर्थ द्रव्य किया जाता है, पदार्थ किया जाता है, तो सार शब्द का अर्थ छह द्रव्यों में सारभूत आत्मा होता है। तो समय सार माने आत्मा हो गया। समय माने छह द्रव्य, जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये छह द्रव्य। इन छह द्रव्यों में सारभूत कौन, अपना आत्मा। इसलिए समय और सार एक दूसरा अर्थ किया गया समय सार का। ये जो कहा सम उपसर्ग पूर्वक आय धातु से बनाना, आय माने परिणमन गमन, परिणमन और परिणमन करे वे द्रव्य, वे वस्तु, वे समय। तो छह द्रव्य समय का अर्थ हुआ। लेकिन जो जो धातुएं संस्कृत में गमनार्थक होती है वो ज्ञानार्थक भी होती है। जिन धातुओं का प्रयोग गमन के अर्थ में किया जाता है उन्हीं धातुओं का प्रयोग जानने के अर्थ में भी किया जाता है। तो यदि समय शब्द का अर्थ जानने वाली वस्तु के अर्थ में किया जाए तो समय माने ही होता है आत्मा। दूसरा अर्थ बतला रहा हूँ। पहला समय का क्या अर्थ बतलाया मुकुंद भाई, समय माने वस्तु और सारभूत, सारभूत वस्तु माने आत्मा। तो समय सार मतलब हो गया आत्मा, समय माने द्रव्य, सार मतलब उसमें सारभूत आत्मा। तो समय सार माने आत्मा। अच्छा, दूसरा अर्थ हम बतला रहे हैं, समय माने है वस्तु परिणमन भी करे और जाने भी, वो है समय। तो सभी आत्माएं समय है कि हाँ सब आत्मा समय है। सार क्या है, फिर सार क्या होगा, ये सुनो। यदि आत्मा समय है तो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित आत्मा ही सारभूत है। इसलिए समय सार में आचार्य अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं हम उस आत्म तत्व की चर्चा करेंगे जो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है, ऐसे शुद्ध आत्मा की चर्चा इस समय सार में होगी। दूसरी गाथा में स्व समय की चर्चा और पर समय की चर्चा हुई। गाथा नंबर तीन, तीसरी गाथा में चर्चा हुई कि संपूर्ण लोक में ये समय सर्वत्र सुंदर है। समय की सुंदरता सौंदर्य की चर्चा हुई इसके लोक में। समय माने पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ सुंदर है, पदार्थों के सौंदर्य की चर्चा हुई। हर वस्तु सुंदर है, हर पदार्थ सुंदर है। आपको ऐसा लगता है कुछ वस्तुएं सुंदर है, कुछ बदसूरत है। आपको लगता है कुछ पुद्गल के स्कंद अच्छे हैं, पुष्प आदि फूल वगैरह सुंदर हैं, और आपको लगता है कांटे बदसूरत हैं। आपको लगता है सुगंधित सुंदर पदार्थ ये अच्छे हैं, और आपको ऐसे लगता है कि विष्ठा आदि बदसूरत हैं, खराब हैं। लेकिन यहाँ तो आचार्य देव तीसरी गाथा में कहना चाहते हैं कि जगत का प्रत्येक कण कण पवित्र है। ये कहना चाहते हैं जगत का एक एक परमाणु परमाणु सुंदर है, वो सौंदर्य है। प्रत्येक परमाणु अनंत गुणों से संपन्न है, ये अनंत गुण संपन्नता उसका सौंदर्य है। यदि समझिए आत्मा सुंदर है तो शरीर भी सुंदर है। शरीर अपवित्र नहीं, वो दृष्टिकोण अलग प्रकार का है। हम तो कह रहे हैं शरीर भी सुंदर है, और शरीर नहीं विष्ठा भी सुंदर है। वो पुद्गल के परमाणु में पुद्गलों को पुद्गल देखो, हम उन्हें पर्याय से देखते हैं। यहाँ द्रव्य दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी जा रही है। वस्तु को द्रव्य से देखो, स्वरूप से देखो, स्वभाव से देखो, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ये क्या है, ये क्या चाहिए हमें, पुद्गल है, ये पुद्गल है। आपको यदि ये लगता है कि ये जनवाणी विराजमान करने की तख्ती है, आपको यदि ये लगता है कि ये घड़ी है, आपको यदि ये लगता है कि ये मोबाइल है, आपको लगता है कि ये टेबल है, तो इसका मतलब आपकी दृष्टि सही नहीं है। आपको पुद्गल दिखता है कि नहीं, आपको क्या दिखता है? यदि आप इन पदार्थों को पुद्गल देखते हैं तो आपको राग द्वेष नहीं होगा, और आप यदि इन्हें पर्यायों से देखते हैं तो राग द्वेष खड़े हुए रहेंगे नहीं। पुद्गलों को पुद्गल देखो, पदार्थ को पदार्थ मात्र देखो, द्रव्य को द्रव्य मात्र देखो, पर्याय से मत देखो। पर्याय से देखने वाली दृष्टि वो विकारी दृष्टि है, वो अपवित्र है, वह खूट है। अच्छा, यह प्रत्येक पदार्थ सुंदर है, प्रत्येक पदार्थ अनंत गुण संपन्न है, तो फिर मैं दुखी क्यों हूं? फिर मेरी संसार दशा क्यों है? फिर चतुर्गति में परिभ्रमण क्यों है? फिर मैं सुखी क्यों नहीं हूं? अनंत सुख संपन्न क्यों नहीं हूं? तो चौथी गाथा के अंदर बात कही, क्योंकि तूने आज तक उस शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा को सुना नहीं है। है सर्व सिद्ध परिशुद्ध अनुभूत भोग वंदन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। अनादि काल से ही जीव आज तक तुमने काम भोग वंदन की कथा को सुना है। सिद्ध परिशुदानुभूता चौथी गाथा में कहते हैं, श्रुत है, परिचित है, अनुभूत है, सिखाने की जरूरत नहीं है, विषय कषाय की चर्चाओं को बताने की जरूरत नहीं है। अनादि काल से परिचय में आ रही है, खूब भोगे हैं, भोगों को भोगा है, पंचेन्द्रीय विषय भोगों में लिप्त रहा है, तल्लीन रहा है। ये जो भोग भोगे हैं तुमने आज तक अनादि काल से, ये सब तेरे परिचय और अनुभव में है, तो अभ्यस्त है, हैबिचुअल है, तो उसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सीखने सिखाने वालों की जरूरत नहीं है, कोई उपदेशदाताओं की जरूरत नहीं है। कौन उपदेश दे, क्या उपदेश की जरूरत है, किसी को क्या सिखाने की जरूरत है? लेकिन सुनो, अनादि काल से आज तक कभी हमने एक शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा को सुना नहीं। शुद्ध परिचित अनुभूत विषयों की चर्चा तो अनेक बार होती रही, टीवी के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से, जब गपशप लड़ाने के लिए भेजते हैं, परिवार के साथ में भेजते हैं, तो विषय कषाय की बहुत चर्चाएं होती है, राग रंग की बहुत चर्चाएं होती है। वो चर्चाएं तो खूब सभी परिचय में आई है। कभी सुना आपने आत्म तत्व की चर्चा को? साहब हमने तो सुना है पंडित जी, हमने तो सुना है। ये चौथी गाथा हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये तो उनके लिए जो हमने सुनी नहीं हो, हम तो बरसों से सुन रहे हैं। कि सुनो भाई, सुनने का मतलब क्या होता है? तत्प्रूप परिणाम जाने को कहते हैं सुनना। सुन करके स्वीकार किया या नहीं, सुन करके उस बात को मानी या नहीं, यदि नहीं मानी है, इसका मतलब ये है कि तुमने सुना ही नहीं है, उसको सुनना नहीं कहते। सुनने में आ रही है क्या? हाँ साहब सुनिए, कर्णेन्द्रीय के विषय बनाने को सुनना नहीं कहते। यदि कर्णेन्द्रीय के विषय बनाने को सुनना कैसे होते, तो असैनी पंचेन्द्रीय जीव भी सुनते हैं, कर्ण तो है उनके, असैनी पंचेन्द्रियों के कर्ण तो है, लेकिन कर्ण होते हुए भी कल्याण नहीं होगा उनका, कर्ण से कल्याण नहीं होता। यदा कल शाम को तो प्रवचन में आप यही कह रहे थे कि कर्ण लब्धि पूर्वक कल्याण होता है, वो कर्ण अलग है, ये कर्ण अलग है, दोनों अलग अलग प्रकार के कर्ण है। तो क्या कहा यहाँ? परिचित और अनुभूत होते हुए भी आत्म तत्व की चर्चा को कभी नहीं सुना है, ऐसा बात तो कही कहते हो आप। केवल भगवान के सामने तमाम शरण में जाकर के भी कोरा का कोरा लौट करके आ गया, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गया, तो वहां भी तीर्थंकर परमात्मा जब आत्म तत्व का स्वरूप बतला रहे थे, तो कर्णेन्द्रीय का विषय तो बन रहा था, लेकिन चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहे थे, वो चक्रवर्ती आया यहाँ तो सुनने के लिए, मगर वाले को डिस्टर्ब करता था, इंद्र भी बैठा है, तो बड़े बड़े लोग आए, खुशक भाई यहाँ तो गगन महिमा है, तो इधर उधर ही देखता रहा, अपने स्वरूप को जो दिखा रहे थे उसे नहीं देखा, देखने वाले को नहीं देखा हमने वहां समय शरण में बैठ करके भी। हमारी जो दृष्टि थी उस दृष्टि में इधर उधर ही दिख रहा था, चौर इतने एक साथ फल रही फूल रही है, क्या माहौल है, क्या मौसम है, कितने लोग हैं, असंख्यात जीव सुन रहे हैं, यार यहाँ का तो माहौल ही गजब का है। बहुत से लोग जब सभाओं में, बड़ी बड़ी सभाओं में सुनने के लिए जाते हैं तो माहौल देखते हैं, सुनते नहीं है, इधर में देखते हैं, आप पड़ोस वालों को देखते हैं, शायद तमाम शरण में जाकर के भी हमने यही काम किया, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं समझा, वहां जाकर के भी कोरे के कोरे आ गए। इसलिए आचार्य कुंड स्वामी कहते हैं कि सुनो, पांचवी गाथा में बात कहते हैं आगे, चौथी गाथा में कही कि तूने ये बात कभी सुनी नहीं है, ये प्रश्न किया कि मैंने नहीं सुनी है तो आप सुना दो प्रभु, यही सुनाऊंगा। पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा लेते हैं, ये जो तूने आज तक चर्चा नहीं सुनी कथे भगत भगवान आत्मा की, ये चर्चा मैं तुझे सुनाऊंगा, इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं करूंगा। इस पूरे समयकार ग्रंथ में कोई दूसरी चर्चा नहीं है, सिर्फ परिचित और अनुभूत चर्चाओं की यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ पे जो बात आपने कभी नहीं सुनी हो वो चर्चा कर रहे हैं। समयकार की 415 गाथाएं पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा लेकर के कह रहे हैं, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, पर से विभक्त और स्व से एकत्व, अपने वैभव से उस आत्मा को दिखाऊंगा। और सुन, ध्यान रखना, मैं अपने वैभव से दिखाऊंगा, तू अपने वैभव से देखना, मैं दिखाऊंगा, मैं इशारा करूंगा, तो इशारे को मत देखना, इशारा जिगर किया जा रहा है उसे देखना, तो पकड़ में आएगा आत्मा। मेरे शब्दों को देख करके प्रमोदित मत होना, शब्दों की तरफ आकर्षित मत होना, ये शब्द जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं एक वस्तु को देखना तेरा अवश्य कल्याण होगा। क्या कह रहे हैं आचार्य देव, प्रतिज्ञा लेकर के बैठे हैं। और सुनो, ध्यान रखना, ज्ञानी लोग अपनी प्रतिज्ञा को कभी भूलते नहीं, अपने संकल्प को कभी भूलते नहीं है। वे प्रतिज्ञा लेकर के बैठे हैं, वे संकल्प करके बैठे हैं कि हम शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा को आपको दिखाएंगे। शुद्ध आत्मा को दिखाया है उन्होंने, प्रत्येक गाथा में दिखाया है, हमें नहीं दिखता। देखो, अच्छे अच्छे पढ़ने वालों से चर्चा करो तो वो क्या कहते हैं, छठी गाथा में आत्मा बतलाया है, सातवीं गाथा में आत्मा बतलाया है, 38वीं गाथा में आत्मा बतलाया है, 49वीं गाथा में आत्मा बतलाया है, 73वीं गाथा में आत्मा बतलाया है, ये कलेक्टिव गाथाएं बतलाते हैं, इन्होंने आत्मा बताया है। क्यों हमें अगर इस गाथा में, इसमें आत्मा का स्वरूप 186 संवर अधिकार की, इसमें आत्मा को बतलाया है, अरे किस गलत फहमी में हो भाई साहब आप, इनमें नहीं बतलाया है, प्रत्येक गाथा में आत्मा बतलाया है। आप यदि तो भाव पूर्वक पढ़ो तो आपको भाव समझ में आएगा कि आत्मा है कैसा। तो इन्होंने पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा ली उस शुद्ध आत्म तत्व के स्वरूप को बतलाने की। तो फिर कहा, महाराज आप बता दो, समय हो रहा है आप बता भी दो आखिर आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो सुनो, छठी गाथा में बतलाते हैं, छठी गाथा पे हम चर्चा थोड़ी बहुत यहाँ करने वाले हैं। बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत मार्मिक चर्चा है। आत्मा कैसा है ये नहीं, मैं कैसा हूँ वो बता रहे हैं। अरे पंडित जी, मैं कैसा हूँ मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा, मेरे को मेरे से ज्यादा कौन जानता है, आपको क्या बताऊं मैं कैसा हूँ, दिखता जो भी हूँ लेकिन अंदर से कैसा हूँ मेरी मैं ही जानता हूँ। सुन, मैं तो तू अपने आप को बाहर से जानता है और मैं तो अपने आप को अंदर से जानता है, तो बाहर का मतलब भी नहीं समझता और अंदर का मतलब भी नहीं समझता, अंदर से तेरा क्या स्वरूप है वो तो आचार्य जी बतला रहे हैं। ऐसे लगता है मैं अंदर से जानता हूँ, अंदर मतलब ये समझता है अपने राग देश के परिणामों को, अपने छल कपट माया जादू के परिणामों के बारे में ये समझता है ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। अरे नहीं भाई, ये नहीं है तू, तो कैसा हूँ मैं। कि सुनो, गाथा पढ़ते हैं यहाँ, छठी गाथा, प्रणवी हो दी अपम तो नपम तो जान गोद जो भावो एवं गणंति शुद्धम नादो जो सोद सो केव। नथी अप्रमात के प्रमात नथी जे एक ज्ञायक भाव छे तेरी सूद कहाये ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। क्या कह रहे हैं नची अप्रमत्त के प्रमत्त नची माने नहीं अप्रमत्त के प्रमत्त नची अप्रमत्त नहीं है और प्रमत्त नहीं है ये एक ज्ञायक भाव छे जो एक है जो ज्ञायक भाव है ये रीत शुद्ध कहा है इस प्रकार से शुद्ध जैसे कहते हैं ये ज्ञात पे तो तेज से ज्ञात है तो वही है जो ज्ञात है वही है कि साहब कैसा है ये आत्मा देखिए प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है कहकर के क्या कहना चाहते हैं प्रमत्त नहीं है प्रमत्त क्या होता है प्रमत्त माने होता है प्रमाद प्रमत्त शब्द का अर्थ है प्रमाद अप्रमत्त का अर्थ है प्रमाद से रहित प्रमत्त कहकर के विकारी अवस्थाएं प्रमाद सहित अवस्थाएं और अप्रमत्त कहकर के शुद्धोपयोग निर्मल अवस्थाएं माने विकारी पर्याय भी मैं नहीं हूं नचि अप्रमत्त के प्रमत्त नचि कौन ये एक ज्ञायक भाव से मैं हूं मेरा क्या स्वरूप है इस आत्मा का क्या स्वरूप है ये तेकारी ध्रुव गाय भगवान आत्मा ये कैसा है इस आत्मा के स्वरूप को बतला रहे हैं मेरे स्वरूप को बतला रहे हैं यहाँ आचार्य कुंड कुंड देव ये बतला रहे हैं कि मुझसे मेरा क्या रिश्ता है जो बात मैं भूल गया हूँ उस बात को आचार्य देव यहाँ बतला रहे हैं प्रमत्त नहीं माने विकारी नहीं अप्रमत्त नहीं माने शुद्धोपयोग वाला भी नहीं कि कौन कि आचार्य कुंड कुंड देव कह रहे हैं कि मैं अप्रमत्त नहीं हूँ और मैं प्रमत्त नहीं हूँ कि महाराज हम तो ये समझते थे कि आप संसारी हो इसलिए प्रमत्त होंगे विकारी होंगे कि नहीं नहीं मैं विकारी नहीं हूँ अच्छा तो आप शुद्धोपयोग में रहते हो इसलिए अप्रमत्त होंगे अरे नहीं नहीं मैं अप्रमत्त भी नहीं विकारी भी नहीं और अधिकारी भी नहीं देखो क्या गजब है भाई वस्तु इस गाथा की पंक्तियां छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले महामुनिराज वे अपने आप के बारे में कहते हैं कि मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूँ प्रमत्त है छठे गुणस्थान का नाम चौदह गुणस्थानों के नाम जानते होंगे छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त मैं प्रमत्त भी नहीं मैं अप्रमत्त भी नहीं अच्छा सारे जगत के जीव आचार्य कुंड कुंड स्वामी के बारे में कहते हैं महाराज आप तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती होने लाए आप तो भावलिंगी संत हो भावलिंगी संत कौन होते हैं जो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं ये भावलिंगी संत होते हैं छठे सातवें गुणस्थान के झूले में झूलने वाले ये भावलिंगी संत कह रहे हैं कि नहीं मैं प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं हूँ मैं छठे सातवें गुणस्थान वाला नहीं हूँ इतना ही नहीं कहना चाहते ये तो ज्ञाय भाव की चर्चा करना चाह रहे ये कह रहे प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूँ इसका अर्थ मात्र इतना ही नहीं है कि छठा सातवां गुणस्थान नहीं है एक कदम और आगे बढ़कर के टीकाकारों ने इसकी चर्चा की इसकी व्याख्या की व्याख्याकारों टीकाकारों और कैसी गजब की बात कहते हैं वो कहते हैं सुनो प्रमत्त अंत दीपक है और अप्रमत्त आदि दीपक है आप जानते हैं दीपक कौन से होते हैं क्या है आदि दीपक और अंत दीपक क्या है न्याय शास्त्रों के प्रयोग है जानते होंगे आदि दीपक दीपक
दीवा
दीवा गुजराती में दीवा कहते हैं दरवाजे पर रखो स्टैंडिंग में रखो उस कॉर्नर पर रखना वहां वहां उस कॉर्नर के ऊपर रखा गया तो उसका प्रकाश वहां से कहां आएगा वो कहलाता है आदि दीपक एक होता है लास्ट में रखो यहां तो इसका प्रकाश जाएगा शुरू तक वो होता है अंत दीपक माने जहां रखा है वहां से प्रकाश दूसरी तरफ तक बढ़ता है आदि दीपक का प्रकाश आदि से बढ़ेगा अंत दीपक का प्रकाश अंत से बढ़ेगा तो सुनो जैसे नमोकार मंत्र में भी आती है चर्चा नमो लोए सव्य साहू लोए और सव्य क्या है अंत दीपक है लास्ट में रखा है इनको इनका प्रकाश शुरू तक जाता है माने लोए और सव्य ये नमो अरियंत्रणम के साथ भी समझना अर्थ करते समय माने अरहंत भगवान किस कौन से अरहंतों को नमस्कार है बोले लोक के सवारंतों को नमस्कार है ये बात यहाँ भी लागू होती है कैसा समझ में नहीं आई। प्रमत्त माने होता है प्रमाद, ये है अंत दीपक, नहीं समझे। छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त, इसका मतलब छठवें गुणस्थान में जहाँ प्रमत्त कहा है, पहले से लेकर छठे गुणस्थान तक के सारे गुणस्थान प्रमत्त हैं। नाम के छठे गुणस्थान का है प्रमत्त, प्रमत्त माने प्रमाद सहित, तो क्या छठा ही गुणस्थान प्रमाद सहित है? पांचवें गुणस्थान में प्रमाद नहीं है ये है, तो चौथे में नहीं है कि चौथे में भी प्रमाद है, कि पहले दूसरे तीसरे में तो उनमें भी प्रमाद है, तो फिर ये प्रमत्त छठे गुणस्थान का नाम क्यों कहा? बोले अंत दीपक है, वहां तक के सारे गुणस्थान सब प्रमादी गुणस्थान है। तो प्रमत्त कहकर के पहले से छठा गुणस्थान दिया, और अप्रमत्त शब्द माने प्रमाद रहित अवस्था, ये प्रमाद रहित अवस्था अप्रमत्त जो सातवें गुणस्थान का नाम है, ये आदि दीपक है, माने सातवें गुणस्थान के ऊपर वाले सारे गुणस्थान अप्रमत्त है, प्रमाद रहित है। तो प्रमत्त नहीं हूं जब ये बात कही गई तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रमत्त नहीं है इसका अर्थ हुआ कि पहले से छठे गुणस्थान तक मुझ में नहीं है। जब अप्रमत्त नहीं है यह बात कही गई तो इसका अर्थ है सातवें से चौदहवें गुणस्थान तक भी मुझ में नहीं है। तो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूं का मतलब क्या हुआ कि मैं गुणस्थानों से पार हूं, गुणस्थान मुझ में नहीं है, मैं गुणस्थानातीत हूं, मैं गुणस्थानों से परे हूं, ये कहना चाहते हैं। यहां द्रव्य संग्रह नामक एक ग्रंथ निमिषम सिद्धांती देव का इन ग्रंथों का भाव लेकर के ये द्रव्य संग्रह के अंदर बात कहते हैं, इस छठी गाथा को मुख्य करके ये बात लिखते हैं। मगन गुण थानी ही है चौदस ही हवंतित है अशुद्ध नया विन्य या संसारी सभ्य शुद्धा हूँ शुद्ध नया। अशुद्ध नये की दृष्टि से देखने पर हमें जगत में जीवों के ये चौदह गुणस्थान दिखाई देते हैं, लेकिन सुनो जब हम शुद्ध नये की दृष्टि से देखते हैं तो हमें किसी में गुणस्थान नहीं दिखता, हमें सर्व जीव गुणस्थानातीत नजर आते हैं। हमें मालूम है कुछ गुणस्थान के पाठी लोग यदि सामने सभा में बैठे हुए हों और जब हमने ये कहा कि गुणस्थानातीत, तो ये तुरंत ये समझ लेते हैं कि गुणस्थानातीत तो सिद्ध भगवान होते हैं। गुणस्थान किनके नहीं होता? सिद्धों के नहीं होता। ऐसा नहीं, कभी कभी तो अज्ञानी लोग भी ऐसा समझते हैं, नए नए व्यक्तियों को जब कभी पहली बार पढ़ाओ ना गुणस्थान पढ़ा रहे हैं और उनसे पूछो कि आपके कौन सा गुणस्थान है, नहीं अरे पहला नहीं, लेकिन हमारे कोई गुणस्थान ही नहीं है क्या? ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे हमारे कौन सा गुणस्थान था, हम तो अज्ञानी है, हम तो पहली बार आए हैं साहब, हमारे भी तो कोई गुण नहीं है, और हम तो ये तो आपका उपदेश सुनने के लिए आए हैं, हम कैसे हैं, हम क्या बताएं आपको, हम तो बहुत पापी हैं, हमारे कोई गुणस्थान नहीं है। कहते सुन भाई, गुणस्थान जिसके नहीं होता है वो सिद्ध भगवान होते हैं क्या? गुणस्थान से रहित कोई संसारी जीव नहीं होता, सर्व जीवों के गुणस्थान होते हैं, गुणस्थानातीत कोई नहीं हो सकता सिद्ध भगवान को छोड़कर, तो गुणस्थान तो होंगे, तो आपके कौन सा गुणस्थान है पहला, कौन सा गुणस्थान है आपके, चौथा, पहला या चौथा, पहला या चौथा, छठी गाथा पढ़ करके भी पहला चौथा बताया क्या बताया आपने? छठी गाथा में कह रहे हैं आपके गुणस्थान नहीं है, छठी गाथा में कहना चाह रहे हैं आत्मा के गुणस्थान नहीं है, गुणस्थान पर्याय में होते हैं, और पर्याय दृष्टि से मिथ्या दृष्टि क्या, पर्याय दृष्टि से देखने वाली जो दृष्टि है उस दृष्टि में खूट है, अरे आत्मा तो कभी मिथ्यात्मी होता नहीं, आत्मा मिथ्यात्मी नहीं होता, मैं कभी मिथ्यात्मी नहीं हुआ, मैं कभी भिखारी नहीं हुआ, मैं कभी अशुद्ध नहीं हुआ, मैं कभी संसारी नहीं हुआ, मुझे कभी गुणस्थान नहीं आए, मुझे मार्गणा स्थान नहीं आए, मुझे जीव समाप्त नहीं आए, मुझे पर्याप्तियां नहीं है, मुझे प्राण नहीं है, कौन हूं मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं, गुणस्थानों से अतीत मेरा स्वरूप है, ये मैं हूं। जानते हैं आप किसकी चर्चा चल रही है? जो एक ज्ञायक भाव है उसकी यहाँ चर्चा चल रही है, ज्ञायक भाव के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। ज्ञायक को ज्ञायक देखो, एकेन्द्रीय मध्य को, पंचेन्द्रीय मध्य को, मनुष्य मध्य को, त्रिवेंद्र मध्य को, इन पर्याय दृष्टियों से मध्य को, आज तक पर्याय दृष्टि से देख देख करके पर्यायों में रुलता रखड़ता रहा है, क्यों होते हुए हमारी ये संसार दशा, क्योंकि अपने आप को द्रव्य दृष्टि से नहीं देखा, द्रव्य दृष्टि से देखो। जो पहली बार इस चर्चा को सुन रहे हूं उनसे भी कहते हैं पर्याय दृष्टि से अपने आप को मत देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो। अरे पंडित जी आज तो आपने क्या गजब बात कह दी, मैं तो हमेशा ही द्रव्य दृष्टि से देखता रहा हूं। द्रव्य पर दृष्टि है मेरी, अरे ये द्रव्य नहीं, एक पैसे को द्रव्य समझता है, ये द्रव्य नहीं है। अंदर में जो ऐसा पल्लव से पार एक द्रव्य बैठा है, त्रिकाली ध्रुव का आत्म तत्व है, जो परम पारिणामी भाव स्वरूप है, उसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पारिणामी भाव की चर्चा, एक ज्ञायक भाव कहकर के पुकारा है। एक गाथा के शब्द क्या कह रहे हैं, नसी अपमत्त, नसी अपमत्त, अपमत्त नहीं है, शुद्ध योग वाले नहीं है, और पमत्त नसी, प्रमादी भी नहीं है। ये एक ज्ञायक भाव से, एक है ज्ञायक भाव, एक है, एक एक कह रहे हैं उसे, माने अखंड है, अवेद है, किसी प्रकार के भेद नहीं करना। 14 गुण स्थानों के भेद अशुद्ध दृष्टि से दिखाई देते हैं, 14 मार्गणा स्थानों के भेद अशुद्ध दृष्टि से दिखाई देते हैं, शुद्ध दृष्टि से देखने पर भेद नहीं दिखाई देते हैं, विकार नहीं दिखाई देता है, पर्याय नहीं दिखाई देती है। अरे पर्याय मात्र से पार देव देवालय में बैठा हुआ एक भगवान शुद्ध स्वरूप, साहब आप गुणस्थानातीत कह रहे हो, हमने तो सुना है गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान होते हैं, ये सुनो देह देवालय में बैठा हुआ भी सिद्ध भगवान है। ये सिद्ध भगवान अकेले भी नहीं है, जो देह देवालय से देह से भिन्न देह, अच्छा सुनो और सुनो बात सुनूंगा, जबकि सिद्ध भगवान कौन होते हैं, सिद्धों के बारे में आप क्या जानते हैं, कर्म से रहित हो गए, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित हो गए, शरीर से रहित हो गए, और शरीर ही होते हैं सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान के शरीर होता है क्या,
नहीं,
नहीं होता, सिद्धों के शरीर नहीं होता, ठीक है। तो आप आत्मा हैं या नहीं
है?
आत्मा है, तो आत्मा से शरीर भिन्न है कि नहीं
है?
आत्मा से शरीर भिन्न है ना, तो आपके शरीर है या नहीं, शरीर आपका है या नहीं?
नहीं
है, तो आपका भी शरीर नहीं और सिद्धों के भी शरीर नहीं है, तो आप ही सिद्ध है। मैं समझ में आ रहा है, अरे हमारे भी तो शरीर नहीं है, आपने कहा सिद्धों के शरीर नहीं होता, मैं आपसे पूछता हूँ कौन से संसारी जीव का शरीर होता है? शरीर किसी का नहीं होता है, शरीर के संयोग से इसे सशरीरी कहा जाता है, वास्तव में संयोग में होने मात्र से ये जीव कभी शरीर वाला नहीं हुआ, ये तो सदा काल शरीर से रहित है, सदा काल शरीर से भिन्न है। मैं तो अनादि काल से शरीर के भीतर रहता हुआ भी, सुनना, अनादि काल से शरीर के अंदर रहता हुआ भी आज तक इसने कभी शरीर को छुआ नहीं है, अनटच रहा है, अनटच शरीर के अंदर रहता हुआ भी, बर्तन में रहता हुआ दूध बर्तन को छूता नहीं है, ये सिखा रहे हैं यहाँ। गिलास में भरे हुए पानी ने गिलास को टच नहीं किया है, मानोगे आप इस बात को, ये बता रहे हैं यहाँ पर। शरीर में रहता हुआ आत्मा शरीर को छूता नहीं है कि नहीं छूता है? शरीर को यदि आत्मा छूने लगे तो आत्मा अपवित्र हो जाए, आत्मा गंदा हो जाए, आत्मा मलिन हो जाए, क्योंकि देह मलिन, देह अपवित्र, देह अशुचि, देह दुर्गंधमय और आत्मा सुगंधित पदार्थ। पता है जब ये सुगंधित पदार्थ के देह में से निकल जाता है तो देह भी दुर्गंध मारने लगती है, मुर्दा शरीर दुर्गंध, ये बदबू आ रही है, मर गया हो कोई, ये डेड बॉडी की बदबू आ रही है, क्यों आ रही है बदबू और अब तक क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि अंदर सुगंधित पदार्थ बैठा हुआ था, तो देह के भीतर एक सुगंधित पदार्थ बैठा हुआ था जिसकी वजह से देह की अपवित्रता भाषित नहीं होती थी, अब वो सुगंधित पदार्थ निकल करके चला गया तो देह अपवित्र अशुद्ध भाषित होने लगी। सुनो आत्मा पवित्र है, आत्मा की सुगंध है, देह दुर्गंधमय है, देह की दुर्गंध से दृष्टि हटाओ और आत्मा की सुगंध को देखो, आप मेरी आत्मा की सुगंध को देखेंगे तो भगवान आत्मा आपको पारिणामिक भाव स्वरूप नजर आएगा। तो फिर यहाँ पारिणामिक भाव क्यों नहीं लिखा? यदि आत्मा पारिणामिक भाव वाला है तो यहाँ इस गाथा में उस आत्मा के लिए पारिणामिक भाव क्यों नहीं लिखा, ये बताओ। अप्रमत्त भी नहीं है, प्रमत्त भी नहीं है, पर्याय मात्र से पार है, जिसमें पर्याय नहीं होती है वो पारिणामी भाव होता है। पांच प्रकार के भाव है ना, तत्वार सूत्र दूसरे अध्याय के प्रारंभ में पढ़ेंगे हम। पांच प्रकार के भाव हैं, औक्षमिक, क्षायिक, क्षायोक्षमिक, औदयिक और पारिणामिक। ये जो पारिणामिक भाव है, ये पारिणामिक भाव ये वजनदार है। औक्षमिक, क्षायोक्षमिक, क्षायिक, औदयिक और पारिणामिक, ये मैंने उंगलियों में बतलाया है आपको। ये औक्षमिक सबसे हल्का, ये चिटकी उंगली है ना, ये सबसे हल्की है। फिर क्षायोक्षमिक इससे वजनदार है, ऊपर चढ़े। फिर क्षायिक ये और वजनदार है, साइज और बढ़ गई। फिर औदयिक ये हल्का भाव है, तो यहां से नीचे उतर गए। तो फिर साथ ये पारिणामिक कि ये बहुत छोटा है, कि बहुत छोटा नहीं है, ये सबसे ज्यादा वजनदार है। क्योंकि किसी भी पदार्थ को जब आप उठाते हैं तो चार एक तरफ होते ही अकेला एक तरफ होता है।
बात सही है
क्या? ये पारिणामी भाव बहुत वजनदार है, ये बहुत पावरफुल है। और मैं तो कभी कभी ऐसा कहता हूँ, सुनो, पारिणामी भाव की विराजना से अनादिकाल से अधिक भाव खड़ा है। इस पारिणामिक भाव की विराजना करता रहा तो अनादिकाल से औदयिक भाव खड़ा रहा, और पारिणामिक भाव का क्षण मात्र के लिए अवलंबन लिया तो औक्षमिक भाव हो गया, और पारिणामिक भाव का ज्यादा अवलंबन ले तो क्षयोक्षम हो जाए, और पारिणामिक भाव का सदा काल के लिए अवलंबन हो तो क्षायिक भाव हो जाए। और पारिणामिक भाव की विराजना करे तो औदयिक ऊर्जा रहे, संसार दशा के अंदर परिभ्रमण करता रहे, आज तक अपने स्वरूप को नहीं जाना हमने, और पारिणामी भाव को नहीं जाना। पारिणामी भाव माने पर्याय मात्र से पाए, ये चार भाव तो पर्याय रूप है, चार भाव पर्याय रूप है। पारिणामी भाव पर्याय रूप नहीं है, ये द्रव्य रूप है। ये पारिणामी भाव त्रिकाल है, ये पारिणामी भाव सदा काल है, ये पारिणामी भाव अनचेंजेबल है। इसका मतलब
निगोज में भी है,
निगोज में भी अनचेंजेबल है। इसका मतलब निगोज में गया तो भी कुछ कमी नहीं आई, और यहाँ आ गया तो कुछ बढ़ा नहीं। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या क्या बढ़ा, किसने क्या बढ़ा ये बता, किसने क्या बढ़ गया। किताब संपत्ति बढ़ रही है, संपत्ति बढ़, संपत्ति बढ़, संपत्ति तो बढ़ रही है, समझ में आ रही, तेरे में क्या बढ़ा ये बता, तेरे में कुछ बढ़ा के नहीं बढ़ा, पर बढ़ गया क्या बोलिए। देवन जी कहते हैं क्या बढ़ गया तेरे में संपत्ति के बढ़ने से, अरे साहब मैं बढ़ा, तू कुछ नहीं बढ़ा है, तेरा मान बढ़ा है, तेरे में कुछ वृद्धि नहीं है, क्योंकि हानि वृद्धि से रहित तत्व बैठा हुआ है देव देवालय में, जिसमें हानि भी नहीं होती, जिसमें वृद्धि भी नहीं होती। ऐसा पारिणामिक भाव स्वरूप अंदर बैठा हुआ, एक समय की पर्याय मात्र जिसमें नहीं है, जब एक समय की पर्याय नहीं है तो विकारी पर्याय कैसी होगी, और विकारी पर्याय नहीं है निर्मल पर्याय, अरे निर्मल पर्याय कहां से होगी, क्योंकि आखिर वे भी है तो पर्याय ही, अप्रमत्त नहीं है माने निर्मल पर्याय वाला नहीं है, प्रमत्त नहीं है माने विकारी पर्याय वाला नहीं है, प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है कहकर के कहना चाहते हैं, विकारी और निर्मल दोनों पर्यायों वाला नहीं है माने पर्याय मात्र से पार है। ये साहब हमने तो ये सुना है कि पर्याय से पार होता है वो पारिणामिक होता है, तो हम तो ये सोच रहे थे अप्रमत्त नथी, प्रमत्त नथी, ये एक पारिणामिक भाव छे ऐसा कहेंगे तो क्या भाव कह रहे हैं, ये सुनो, पारिणामिक भाव तो सब द्रव्यों में होता है, पारिणामिक भाव सब द्रव्य में होता है, इसलिए पारिणामिक नहीं कहा, कि परम्परा पारिणामिक की चर्चा मत करो, यहाँ तो ज्ञायक भाव की बात कर रहे हैं। ज्ञायक भाव शब्द क्यों दिया है, ये ज्ञायक भाव सब द्रव्यों से कुछ स्पेशल बतलाने के लिए ज्ञायक भाव शब्द का प्रयोग किया है। ज्ञायक भाव माने क्या होता है आर्जव, ज्ञायक जानने वाला आत्मा, ज्ञायक नहीं, ज्ञायक भाव
मनुष्य भी हो गया, मनुष्य
नहीं,
सब द्रव्य में है तो सही,
सब द्रव्यों में ये ज्ञायक भाव तो सदा है, पारिणामिक भाव तो सब में था, सब द्रव्यों में था, ज्ञायक भाव सिर्फ जीव द्रव्य में था,
जीव द्रव्य में था,
अच्छा, पारिणामिक भाव छह द्रव्यों में है और ज्ञायक भाव अकेले जीव द्रव्य में है। उद्गल में भी पारिणामिक भाव है, उद्गल भी पारिणामिक भाव है। हाँ जी, उद्गल में भी पारिणामिक भाव है। उद्गल अपने उद्गलत्व को कभी नहीं छोड़ता, ये उसका पारिणामिक भाव है। जीव अपने जीवत्व को कभी नहीं छोड़ता, ये उसका पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव के तीन भेद कहे ना, कौन से मुकुंद भाई याद होंगे? रमेश भाई, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व कभी मिट सकता है? जीव का जीवत्व
नहीं।
कोई जीव भव्य हो तो अभव्य हो सकता है?
नहीं।
कोई अभव्य हो तो भव्य बना सकते हैं?
नहीं।
इसे कहते पारिणामिक भाव, अनचेंजेबल।
भव्य तीन प्रकार के होते
हैं,
लेकिन एक का तो शॉर्ट टर्म में आज,
एक है निकट भव्य, एक है दूर भव्य, एक है दूरान दूर भव्य।
दूरान दूर को भव्य तो बोल रहे हैं उनकी बारी में आने।
हाँ, निकट भव्य कौन? निकट भव्य कौन? एक दो भव में, दो चार भव में जिनको निर्वाण होने वाला है, ये निकट भव्य है। हाँ, ऐसे जी सब निकट भव्य है। जिन्होंने अपने आत्मा के स्वरूप को वर्तमान में यहाँ एक पंचम काल होते हुए भी जान लिया है, देह शता जैनी दशा वर्ते देहातीत, वो सब निकट भव्य है, अल्प काल में मोक्ष जाने वाले। दूर भव्य कौन है भाई? भव्य माने क्या होता है? भव्य माने जो कभी न कभी मोक्ष जाएंगे, उन्हें कहते हैं भव्य। भव्य माने कभी न कभी मोक्ष जाएंगे, उसका नाम भव्य है। तो निकट भव्य माने अल्पकाल में मोक्ष जाएंगे, वे निकट भव्य। दूर भव्य माने
उसका कभी भी मोक्ष नहीं
होगा, दूर होगा। जो कभी न कभी मोक्ष जाएंगे वे दूर भव्य। सौ साल बाद, सौ भव बाद, हजार भव बाद, लाख करोड़ भवों बाद, सागरों कोड़ा कोड़ी सागरों के बाद में मोक्ष जाएंगे, वे कौन है? दूर भव्य। एक निकट भव्य, एक दूर भव्य। ऋषभ देव स्वामी ने जब मारीची के बारे में कहा कि ये भव्य है, चौबीसवां तीर्थंकर बनेगा, तो वो दूर भव्य था। लेकिन ये दूर भव्य होना मारीची को बर्दाश्त नहीं था, उसको तो निकट मोक्ष जाना था। और निकट मोक्ष जाने के चक्कर में क्या हुआ कि उसकी भव्यता दूर हो गई, दूर भव्य हो गया वो। एक तीसरे प्रकार के भव्य होते हैं जिनका नाम है दूरान दूर भव्य। ये क्या होते हैं? दूरान दूर भव्य कब मोक्ष जाएंगे कि कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। तो फिर भव्य कैसे? भव्य इसलिए है कि उनमें मोक्ष जाने की शक्ति तो है, मोक्ष जाने की पात्रता तो है, लेकिन कभी मोक्ष जाएंगे नहीं। तो साहब शक्ति है तो क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? शक्ति है तो ले जाएंगे बस। तो कभी नहीं जाएंगे फिर अभव्य ही कह दो ना इनको, इनको अभव्य क्यों? आप दूरान दूर भव्य क्यों कह रहे हो? आप अभव्य कह दो इनको कि नहीं भाई अभव्य नहीं कह सकते, अभव्य में तो मोक्ष जाने की शक्ति ही नहीं है।
इसमें शक्ति है।
तो शक्ति है तो मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं कभी भी। इसके लिए नेमिचंद्राचार्य देव ने गोमट पार में एक एग्जांपल दिया, उन्होंने दिया है, वो दे रहा हूं मैं। क्या उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि दो स्त्रियां हैं, क्या जो मां कभी नहीं बनेंगी, कि एक स्त्री है बांझ स्त्री, वो मां कभी नहीं बनेगी, और एक है विधवा स्त्री, वो मां कभी नहीं बनेगी। तो जो बांझ स्त्री है उसमें तो पुत्र जन्म की योग्यता ही नहीं है, पात्रता ही नहीं है। ऐसे अभव्य जीव इनमें तो मोक्ष जाने की पात्रता ही नहीं है, ये तो बांझ स्त्री के समान है। और एक है विधवा स्त्री, यहां से विधवा नहीं समझना अमेरिका की, अमेरिका के तो हाल ही खराब है, हम तो इंडिया के भारत की बात करते हैं भाई, और आचार्य देव ने तो हजार साल पहले की विधवा स्त्रियों की बात कही है।
बात कही है।
तो वो क्या कहते हैं कि जिसके पति का स्वर्गवास हो गया है, अब उस स्त्री में मां बनने की योग्यता है यानी कि योग्यता तो है तो कब बनेगी कि बोले कभी नहीं, योग्यता होते हुए भी वो मां कभी नहीं बनेगी। ऐसे ही जो दूरांदूर भव्य है, ये दूरांदूर भव्य कैसे है कि योग्यता तो है लेकिन उनको कभी ऐसा समागम नहीं मिलेगा, कभी ऐसी योग्यता नहीं बनेगी, कभी उनको संयोग नहीं बनेगा शक्ति जगाने के लिए, देशना लग गई, ऐसी देशना का उन्हें कभी योग नहीं बनेगा, इसलिए उनकी वो भव्यता दूर दूर होती चली जाएगी, दूरांदूर भव्य। एक जगह तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा है, लेकिन ऐसा कथन भी पढ़ा कि दूरांदूर भव्य वे है जो नित्य निगोद से कभी निकलेंगे ही नहीं। नित्य निगोद से कभी नहीं निकलेंगे, हमेशा वहीं रहेंगे, क्योंकि निकलने के बाद तो अब उनको संयोग बनेगा कहीं न कहीं,
बराबर
है। और यदि भव्य होने की भव्य पने की योग्यता पात्रता है उनमें तो फिर वो कभी न कभी मोक्ष चले जाएंगे। तो दूरांदूर भव्य है नित्य निगोद में रहने वाले, तो सुनो हम दूरांदूर भव्य तो नहीं है, ये तो नक्की हो गया क्योंकि नित्य निगोद में नहीं है। अब दूरांदूर भव्य तो नहीं है तो अभव्य, अरे अभव्य तो बहुत इतनी बड़ी गाली है, इतनी बड़ी गाली है कि सोचना भी मत अपने आप के बारे में कभी अभव्य, अभव्य तो हो नहीं सकते। लेकिन साहब दूरांदूर हुए तो बोले दूरांदूर तो नित्य निगोद वाले होते हैं, हम वो भी नहीं है, तो फिर दूर भव्य मे भी पॉसिबल, दूर भव्य हूँ। लेकिन सुनो इस वितरागी तत्व ज्ञान को रुचि पूर्वक सुनने वाले दूर भव्य नहीं निकट भव्य होते हैं।
वाह,
ये तत्व की चर्चाएं जिन्हें सुहाती है वे निकट भव्य होते हैं, दूर भव्य तो वैसे जीव हो सकते हैं जिनको हम जिनने हमसे कहा कि पंडित जी हमारी बहुत रुचि है, हमें तो यही समझना है। फिर हमने कहा ठीक है कितने बजे आना बैठना, तो नहीं समय तो नहीं बैठ पाएंगे, तो आज कितनी रुचि समझ आ कितने रुचिवान हो। अरे रुचि उसे कहते हैं कि जिसके लिए सब छोड़ करके लगे उसका नाम है रुचि। हजार काम पड़े हो लेकिन ये काम जब बता दिया कि सारे काम छोड़ दिए हमने इसके पीछे, उसका नाम है उत्साह, उसका नाम है रुचि। उसे जैसे कमर कसके पुरुषार्थ से लगना, इतनी रुचि और उत्साह है क्या हमारे में? नहीं है यदि तो काम नहीं होगा, ये पुरुषार्थियों का धर्म है। मौज मस्ती में हाँ मिल गया तो कर लिया, टाइम नहीं था तो टाइम किसके लिए था तुम्हारे पास में ये बताओ। जिसके लिए टाइम था कीमत उसकी है। यहाँ कह रहे हैं क्या कि सबसे अधिक ऐसी लाइन में लिखी है देखो, सारे जगत के पदार्थों से अधिक यदि आप अपने आत्मा को जानो स्वीकार करो तो आत्मा की उपलब्धि होती है। चक्रवर्ती की संपदा से ज्यादा बहुमूल्य आपको ये लगे, एक तरफ आपको राजतिलक होना हो और दूसरी तरफ आपको गाय भगवान आत्मा की चर्चा सुनने का अवसर मिल रहा हो, अब इन दोनों में से आप किसे चुनते हो? आपका चुनाव इस बात से दिखा देगा कि आपकी मंजिल क्या है। दुर्योधन का जो चुनाव था ना, क्या उस चुनाव ने बतला दिया कि इसका क्या हश्र होना है? युधिष्ठिर और दुर्योधन बताया आर्य श्री कृष्ण के पास में पहुंचे थे,
अर्जुन और दुर्योधन
बोलो क्या चाहिए? युद्ध था, युद्ध चल रहा था दोनों के बीच में, युद्ध डिक्लेयर हो गया था, सहयोग लेने के लिए पहुंचे, सहयोग से दूर जैसे ही वहां पहुंचे दुर्योधन एक सेकंड आगे था, पहले आया था
जी,
और अर्जुन या युधिष्ठिर जो भी समझो वो एक सेकंड पीछे थे। जब युद्ध में सहयोग की चर्चा चल पड़ी तो उन्होंने श्री कृष्ण ने दो हिस्से कर दिए। श्री कृष्ण ने कहा सुनो दो विभाजन है, एक हिस्सा एक पार्ट इनके पास में और एक इनके पास में, दो भागों में बांट रहा हूं मैं। बोले किधर बांट रहे हो? ये एक तरफ तो है मेरी सारी सेना, नारायण थे ना तीन खंड के अधिपति, सारी सेना रथ हथियार सब सब सारे सिपाही सब एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं अकेला। और मुझे हथियार नहीं उठाऊंगा और युद्ध नहीं लड़ूंगा। बोलो मांगो अर्जुन क्या मांगना है? दुनिया में नहीं शरीर में आया था। फर्स्ट पहला अधिकार मेरा है कि मांग ले भैया, तू मांग ले पहले कि सीना वगैरह सब मेरे को चाहिए, तुम सारथी बनेंगे, मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए। बेटा साहब तुमने क्या चुना है उससे समझ में आ गया तुम्हारी क्या गति होने वाली है। सुनो, एक तरफ आत्म राम है और दूसरी तरफ सारी दुनिया सारा जगत है। सारे जगत से बहुमूल्य यदि आपको आत्मा दिखाई देता हो, सारे जगत से बहुमूल्य यदि आपको ये चैतन्य तत्व दिखाई देता हो, आपको यदि घड़ी से ज्यादा कीमत इस गायक की आती हो, ये घड़ी नहीं, ये समय नहीं, वो समय सार, यदि उसकी ज्यादा कीमत समझ में आती है तो समझ लेना कि सही दिशा में चल रही है गाड़ी। क्या ये बहुमूल्य तत्व जो देव देवालय में बैठा हुआ, इसकी महिमा आपको आनी चाहिए। ये आत्म तत्व बैठा हुआ है भाई साहब, इसकी कीमत कीमत समझो आप। आप हो कौन, आपको अपनी कीमत नहीं है। मोह की महिमा देखो, मोह की महिमा देखो, क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। अपनी महिमा नहीं आ रही है, गाड़ियों की महिमा आ रही है, बंगले की महिमा आ रही है, सुंदर शरीर की महिमा आ रही है, सुंदर सुंदर कपड़ों की महिमा आ रही है, नए नए गैजेट्स की महिमा आ रही है। किसी भी नए गैजेट्स को देखता है, देख अरे यार कितना सुंदर, बड़ा ही काम हो जाता है, कितना चमत्कार देखता है। सुन, ये चमत्कार एक तत्व देह देवालय में बैठा हुआ है, इसके चमत्कारों की महिमा नहीं आती है तुझे। ये असली चमत्कार तो ये है अंदर में, इन चमत्कारों की महिमा नहीं आती है। ये चमत्कारिक तत्व बैठा हुआ है देह देवालय में, इसका स्वरूप यहाँ बतला रहे हैं आचार्य कुंडकुंड स्वामी। इसका स्वरूप बतलाने की प्रतिज्ञा ली है यहाँ आचार्य कुंडकुंड स्वामी ने, और प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए इस पहली गाथा में, छठी गाथा के अंदर उन्होंने छठी का दूध याद दिला दिया। ऐसी ऐसी क्या रहस्य भरे हैं, एवं भरम की शुद्धम नादो देशो दूसरे जीव, क्या एवं भरम की शुद्धम, इस प्रकार जो शुद्ध जानता है, इस प्रकार जो शुद्ध है, जिसका शुद्ध स्वरूप है, जो सो दो सुसो केव, जो सो दुसो केव, जो है वो है। किताब आत्मा का स्वरूप बताओ तो सही, कुछ तो बताओ भगवान। अब आपने जब आत्मा की इतनी महिमा गाई है तो कुछ तो इसका वर्णन करो। ये सुन भैया क्या महिमा गाए, वो तो जो है सो है, किन्हीं ने फिर भी कुछ तो बतलाओ। ये सुन, शब्दों में उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। तो कर्णेन्द्रीय से आत्मा के स्वरूप को सुनना चाहता है, तो आत्मा का स्वरूप कर्णेन्द्रीय से पकड़ में नहीं आता है, आत्मा का स्वरूप ज्ञान से पकड़ में आता है। ज्ञान तेरे पास में मौजूद है और ज्ञायक तेरे पास में मौजूद है, तेरे ज्ञान की पर्याय और तेरा ज्ञायक, मैं कौन बीच में आने वाला, मैं बीच में नहीं आना चाहता। तेरे ज्ञान की पर्याय, तेरे ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन ले, तो ज्ञायक स्वरूप तेरे समझ में आवे। कैसे समझ में आएगा कि जो है तो है, बस वही है। शब्दों में नहीं आएगा, वचनों में नहीं आएगा, शास्त्रों की पंक्तियों में नहीं आएगा, आचार्यों की पंक्तियों में नहीं आएगा, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में नहीं आएगा, किसी के कहने किसी के समझाने से नहीं आएगा। बस वो कैसा है, वो तो जो है तो है, इतना समझ लो आप। देखो क्या लिखा है, ज्ञात ते तो जो है सो बात है। हमने कहा था इसके बारे में कुछ बताओ, इसका कैसा है, जो है सो है, कैसा है, घी का स्वाद कैसा होता है। मुकुंद भाई से तो चेतन का स्वाद कैसे बताया जाएगा, ये चेतन भी स्वाद से अतीत है, ये चेतन भी रस से अतीत है, इस चेतन में भी रंच मात्र भी रस नहीं है। रस नहीं होते हुए भी यह आत्म तत्व कहता है, अरस, रस नहीं होने से आत्म तत्व कैसा होगा बेटा, अरस, अरस है, अरस है, नहीं नहीं ये तो सरस है, ये अरस नहीं है, ये सरस है। इस सरस आत्म तत्व का क्या स्वरूप है, इस तरफ आत्म तत्व को कैसे जाना जाए, किस प्रकार हम उसका अवलंबन ले रहे हैं, ये बातें यहाँ इस छठी गाथा में ही नहीं इसकी टीका में भी आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने बहुत मार्मिक ढंग से खोली है। हम इस प्रकरण की चर्चा कल विस्तार से करेंगे, अभी की बात को यही।
ये स्वरूप सम व्याविना